हरे कृष्ण। महाभारत की इन कक्षाओं में अभी तक जरासंध के वध की कथा को सुन चुके हैं। पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध के पास गए और कैसे उन्होंने उसका वध किया, और उसको सुनते हुए हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे जीवन में सभ्यता बहुत आवश्यक है, न केवल भौतिक जीवन में सभ्य होना आवश्यक है लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी सभ्यता बहुत आवश्यक है। इसकी चर्चा पिछली बार हम लोग कर रहे थे, कैसे जरासंध ने एक आसुरी स्वभाव होते हुए भी बड़ी ऊंची सभ्यता का उदाहरण हम सबके सामने रखा, कैसे उसने ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया। हम लोग ये भी सुन रहे थे कि जब भी वो युद्ध करने आता तो ब्राह्मणों को सामने रख कर आता था, और इसी कारण कृष्ण उसका वध नहीं करते थे। तो उसकी शक्ति थी, ब्राह्मण बड़ा आदर सम्मान करता था। पिछली बार हमने चर्चा की कि क्यों सभ्यता आवश्यक है, क्या भक्ति में भी सभ्य होना आवश्यक है या नहीं। चर्चा करते हुए उदाहरण हम लोग देख रहे थे दधीची मुनि का। भगवान ने देवताओं से कहा था, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि दधीची मुनि को शक्ति प्राप्त हुई है तीन कारणों से, और वो तीन कारण क्या थे कोई बता सकते हैं? पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, किसी को याद है तीन कारण? हाँ जी, विद्या, एक कारण विद्या, बहुत अच्छा, और विद्या, व्रत और तपस्या। माता जी बहुत ध्यान से सुनते हैं, अच्छा है। विद्या, व्रत और तपस्या, भगवान ने बताया कि ये तीनों से उनको शक्ति प्राप्त हुई है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे भक्ति मार्ग में भी या अपने जीवन में हमें विद्या की आवश्यकता है, सही विद्या, अविद्या नहीं। और दूसरा व्रत, व्रतों की चर्चा हमने की थी पिछली बार, और तपस्या, व्रतों को बनाए रखने के लिए तपस्या। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। जब हम सही दृष्टि में सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, तो स्वाभाविक है कि भौतिक आसक्ति से दूर जाने के लिए व्रतों को लेते हैं। व्रत का अर्थ ये नहीं है केवल किसी दिन उपवास कर लेना, व्रत का अर्थ है किसी मार्ग में दृढ़ होने के लिए संकल्प करना। जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए संकल्प करते हैं कि भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, ये एक व्रत है। हम नियमों का पालन करेंगे, ये एक व्रत है। भगवान की पूजा आराधना करेंगे, ये एक व्रत है। तो ऐसे व्रतों को जब सही ज्ञान के आधार पर लिया जाता है तब वो व्रत हमें लाभ देते हैं। कभी कभी व्रतों को भावुकता में ग्रहण किया जाता है बिना ज्ञान के, तो वो व्रत इतना लाभ नहीं देते हैं जितना ज्ञान के आधार पर किया गया व्रत लाभ देता है। तो जब विद्या आती है व्यक्ति व्रतों को लेता है। व्रत अर्थात इस भौतिक जगत से अनासक्त होने के लिए, भगवान से आसक्त होने के लिए किए गए संकल्प व्रत कहलाते हैं। व्रतों की यही परिभाषा है। अगर हमारे व्रत श्री कृष्ण से आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है तो वो व्रत नहीं है। व्रत सही दृष्टि में केवल श्री कृष्ण से आसक्ति बढ़ाने का संकल्प ही हो सकता है। और जब हम ऐसे व्रतों को करते हैं, अर्थात विद्या के आधार पर जब व्रतों को किया जाता है, तो वो सही दृष्टि में तपस्या है। तपस्या केवल एक पांव पर खड़े हो जाना, बहुत कुछ खाना पीना बंद कर देना, ये सारी कोई तपस्या नहीं है। हिमालय में चले जाना, लोग सोचते हैं हिमालय में जाना बहुत बड़ी तपस्या है, ठंड में रहना, पर्वत में रहना, सबसे दूर रहना। हाँ, ये एक तपस्या हो सकती है, लेकिन ये तपस्या की पूर्णता नहीं है, सफलता नहीं है, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं है। जब तक हमारी तपस्या का उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, तब तक वो तपस्या तपस्या नहीं कहला सकती। वो केवल इंद्रिय तृप्ति है, वो केवल अहंकार को बढ़ाना है। इसीलिए इसको जानना चाहिए। भागवत में कहा गया है कि अगर हमारे जो कर्म हैं, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो हि स, अगर हमारे कर्म हमें धर्म की ओर नहीं ले जाते, सच्चे धर्म की ओर, और अगर हमारा धर्म हमें वैराग्य की ओर नहीं ले जाता, और ऐसा वैराग्य जो हमें भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा की ओर नहीं ले जाता, अगर ये चीजें नहीं हैं, जीवन अपि मृतो हि स, ऐसा व्यक्ति जीते हुए भी मरे हुए व्यक्ति के समान है, ये भागवत कहता। तो इसीलिए तपस्या का सही उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो क्यों तपस्या नहीं कही जाती केवल हिमालय में चले जाना, ये तो बहुत बड़ी तपस्या है, ठंड में रहना, बर्फ में रहना, खाना पीना नहीं, ये तपस्या हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी तपस्या है अपने अहंकार को त्यागना, उससे बड़ी तपस्या है अपनी इच्छाओं को त्यागना, उससे बड़ी तपस्या है किसी दूसरे को श्रेष्ठ मानना, उससे बड़ी तपस्या है भगवान को सर्व श्रेष्ठ मानना। ये सच्ची तपस्या है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को त्यागते हैं, समाज को त्याग देना, घर को त्याग देना, हिमालय चले जाना कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। हाँ, सामाजिक दृष्टि से है, अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक तपस्या है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से ये कोई तपस्या नहीं है। इसीलिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है। हम कोई भी कार्य क्यों ना करें, वो कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका उद्देश्य। जैसे भक्ति में हम जप करते हैं, सेवा करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रचार करते हैं, अगर इन सब का उद्देश्य सही नहीं है तो फिर ये भक्ति नहीं है। भगवान के नाम का जप करना और उद्देश्य को गलत रखना, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना, अहंकार को बढ़ाना, अपने मान सम्मान की कामना करना, ये भक्ति नहीं है। ये कृष्ण की भक्ति नहीं, अहंकार की भक्ति है। इसलिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है। कृष्ण भाव देखते हैं, कृष्ण हमारा बाहरी दिखावा नहीं देखते, और ये चीजें हमें जाननी चाहिए। इसलिए विद्या वो होनी चाहिए जो आचार्यों के द्वारा दी गई, व्रत वो होने चाहिए जो परंपरा ने, आचार्यों ने, गुरु ने हमें सिखलाए, और उनके आधार पर हमारी तपस्या होनी चाहिए। मनगढ़ंत तपस्या, अपने मन से, कल्पना से की गई तपस्या उत्पात करती है। तपस्या तो हिरण्यकश्यपु ने भी की, रावण ने भी की, केवल उत्पात करने के लिए। इसलिए उसे तपस्या नहीं मानना चाहिए। तपस्या का उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता, और ऐसी तपस्या आचार्यों के निर्देशन में होनी चाहिए। सही विद्या तभी मिल सकती है। तो इस तरह से पिछली बार हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं। अब जब जरासंध का वध हो गया, श्री कृष्ण वापस आ गए, राजसूय यज्ञ की तैयारियां हुई। राजसूय यज्ञ के लिए चारों भाई चारों दिशा में गए। युधिष्ठिर ने भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उत्तर की ओर अर्जुन गए, पूर्व की ओर भीम गए, दक्षिण की ओर सहदेव गए, पश्चिम की ओर नकुल गए। बहुत विस्तार से वर्णन है कौन कौन से राजाओं से युद्ध हुआ, कैसे मारा, कैसे पराजित किया। प्रायः सभी राजाओं ने कर देना स्वीकार किया, अर्थात ये जाते थे और उनसे कहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, या तो आप कर दीजिए या हमसे युद्ध कीजिए, और युद्ध में उनको परास्त करके फिर उनका सारा धन लेकर आते थे। तो ऐसे अर्जुन ने बहुत आगे तक हिमालय के कई आगे आगे स्थानों में जाकर कई राजाओं को जो वहाँ पर बसते थे उनको परास्त किया, लेकर आए, धन इकट्ठा किया। भीम ने किया, सहदेव ने भी किया। सहदेव दक्षिण भारत में आए थे। सहदेव का वर्णन है कि उसने दो महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे राजाओं को हराया, लेकिन दो लीलाओं का वर्णन करना चाहेंगे। एक थे उनका उनका सामना हुआ राजा नील से। राजा नील, इनका जो राज्य था ये अग्निदेव के द्वारा सुरक्षित था। एक समय ऐसा हुआ था कि अग्निदेव के ऊपर राजा नील ने कृपा कर दी थी, और उस दिन से उन्होंने कहा था कि मैं इस राज्य को सुरक्षित रखूंगा। तो राजा नील से जब सहदेव का युद्ध हुआ तो बहुत भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अग्नि अचानक प्रकट हो गई और सारी सेना सहदेव की परास्त हो गई। अब सोचिए, राजसूय यज्ञ होने वाला है। राजसूय यज्ञ का एक नियम है कि किसी भी राजा से परास्त नहीं होना चाहिए, और अब यहाँ सहदेव की सेना अग्नि को देखकर भागने लगी, परास्त होने लगी। सहदेव वहाँ रुक गए और सहदेव ने प्रार्थना की अग्निदेव से। उन्होंने कहा कि ये जो हम सब कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ होगा तो अग्नि को ही तो अर्पित करना है सब कुछ, तो ये तो सब आपके लिए किया जा रहा है और आप ही हमारा नाश कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने बैठकर प्रार्थना की, अग्निदेव प्रकट हुए और फिर अग्निदेव ने कहा कि ठीक है। उन्होंने राजा नील्स को कहा कि तुम जाकर उनको कर अदा कर दो। तो उस तरह से वो एक स्थान पर जीते। करते करते समुद्र के तट पर आए और उन्होंने घटोत्कच को पुकारा। आपको याद होगा हमने घटोत्कच के जन्म की कथा कही थी, जब भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था और हिडिंबा से विवाह करके पुत्र संतान उत्पन्न किए थे और वो थे घटोत्कच। और उन्होंने कहा था कि जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने घटोत्कच को याद किया और उनसे कहा कि तुम इस समुद्र के पार लंका में जाओ और वहां विभीषण राज्य कर रहे हैं। देखिए, ये महाभारत का समय है और विभीषण को कब राजा बनाया गया था? रामचंद्र जी के समय, रामायण के समय। तो उन्होंने कहा कि आप अभी जाओ, वहां विभीषण राज्य कर रहे हैं आप, क्योंकि असुर थे, उड़ के जा सकते थे, शक्ति थी माया भी, तो आप जाइए और जाकर विभीषण से ये कहिएगा कि हमने आपको भेजा है सहदेव ने, जो कि युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं, और उनसे कहिएगा कि युधिष्ठिर महाराज एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप कुछ उपहार दीजिए उनके लिए। और अगर वो ना दें, मना कर दें, सहदेव कहते हैं, तो कुछ करना नहीं, उनको केवल बताना कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनुमति दी है राजसूय यज्ञ करने की, और श्री कृष्ण की अनुमति से वो कर रहे हैं, बस इतना बताना और वहां से चले आना। अर्थात सहदेव ने कहा, वो जानते थे विभीषण महान भक्त हैं, तो उनसे युद्ध नहीं करना, अगर वो नहीं दे कोई बात नहीं, लेकिन उनसे युद्ध नहीं करना। तो इस प्रकार सहदेव ने भेजा और वहां घटोत्कच गए। घटोत्कच ने जाके बड़ी नम्रता से द्वारपाल से कहा कि जाकर विभीषण महाराज से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो फिर जब विभीषण से मिले, घटोत्कच ने पूरा वर्णन किया वो कैसे आए हैं, विभीषण ने पूरा विस्तार से पूछा, और जब विभीषण ने सुना कि श्री कृष्ण ने अनुमति दी है इस राजसूय यज्ञ के लिए, तो विभीषण ने बहुत सारा धन दिया। महाभारत में वर्णन है कि करीब 88 निशाचर, निशाचर यानी जो राक्षस होते हैं रातों को, निशा यानी रात्रिचर यानी जो चलते हैं, तो रात्रि में जो भ्रमण करते हैं, ऐसे 88 निशाचरों को भेजा घटोत्कच के साथ। इतना सारा धन दिया था उठाने के लिए, बहुत सारा धन, और वो सब लेकर वो सहदेव के पास आए। तो ऐसे उस समय भी उन्होंने विभीषण से भी धन प्राप्त किया। तो चारों दिशाओं में, उत्तर से अर्जुन, पूर्व से भीम, दक्षिण से सहदेव और पश्चिम से नकुल, ये सारे स्थानों से बहुत सारे रत्न लेकर आए, हीरे जवाहरात, मोती, सोना, चांदी, घोड़े, बहुत सारी चीजें, भंडार भर गया। ऐसा लिखा है महाभारत में कि इतना भंडार उस समय हो गया युधिष्ठिर का कि अगर जीवन भर केवल देते रहते तो भी खत्म नहीं होता, इतना भंडार। और फिर उस सब के बाद श्री कृष्ण आए। महाभारत में वर्णन है कि श्री कृष्ण कितने रत्न लाए इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। श्री कृष्ण भी उपहार लेकर आए, उनको तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो भी उपहार लेकर आए युधिष्ठिर महाराज के लिए, असंख्य असंख्य मणि, असंख्य रत्न, कोई गिनती नहीं। तो ऐसा भंडार पूरा भर गया। पिछली बार हम वर्णन कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ने जो ये राजसूय यज्ञ किया, इसका प्रमुख उद्देश्य था श्री कृष्ण का गुणगान। राजसूय यज्ञ से वैसे हम लोग बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे राजसूय यज्ञ के वर्णन में, उन शिक्षाओं को कहेंगे। लेकिन प्रमुख शिक्षा या प्रमुख उद्देश्य इस राजसूय यज्ञ का था श्री कृष्ण का गुणगान करना। युधिष्ठिर महाराज ने अपना सारा धन केवल इसीलिए लगाया, इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा यज्ञ, ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए थे, नारद मुनि, व्यास देव, सारे केवल एक उद्देश्य के लिए कि श्री कृष्ण का गुणगान हो। तो जब ये राजसूय यज्ञ प्रारंभ होना था, युधिष्ठिर ने अनुमति मांगी। जब श्री कृष्ण आए तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ करना है, या तो आप दीक्षा ले लीजिए यज्ञ की, अर्थात आप कीजिए, या फिर हमें अनुमति दीजिए, हम कर लेते। देखिए उस समय भी युधिष्ठिर ये नहीं चाहते थे कि हम ही महाराज बने, हम ही सम्राट बने। उन्होंने कृष्ण से कहा आप लीजिए दीक्षा, आप योग्य हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए एक पृथ्वी का सम्राट बनना कौन सी बड़ी बात है, उनके लिए एक पृथ्वी का सम्राट क्या है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, आप योग्य हैं, आप बनिए, आप दीक्षा लीजिए। दीक्षा अर्थात जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ की दीक्षा जो व्यक्ति लेता है, फिर जब तक यज्ञ पूर्ण ना हो उसको अनुमति नहीं होती कि वो वहां से हिल सके। फिर वो अलग अलग दीक्षाएं होती हैं, जैसे हम रामायण में वर्णन पढ़ते हैं कि जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे थे और सारे असुर उस समय उनको तंग करते थे, तो वहाँ वर्णन है कि जब रामचंद्र जी को ले गए तो उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि अब मैं यज्ञ की दीक्षा ले रहा हूँ, अब इसके बाद जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा मैं बोलूँगा नहीं। उन्होंने ये दीक्षा ली थी कि वो बोल नहीं सकते, पूरा यज्ञ होने तक कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे अलग अलग दीक्षाएँ होती हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ की दीक्षा ली कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा वो वहाँ से नहीं हटेंगे। तो ऐसे उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। ये राजसूय यज्ञ बहुत बड़ी व्यवस्था थी, अलग अलग भक्त, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग विभाग दिए गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज देखिए अपने उदाहरण से समझाते हैं कि जब हमें कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करना हो तो अकेले नहीं करना है, हमें सबको बांट कर, सबके मिलकर करना चाहिए। सब आए थे उसमें, व्यासदेव यज्ञ कराने आए थे, नारद मुनि आए थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सब आए थे। इन सबको आमंत्रण दिया था, धृतराष्ट्र आदि, विदुर, कृपाचार्य, सब सारे पृथ्वी से राजाओं को बुलाया था और सबकी बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेवाएं दी थी। अब इतनी सारी बड़ी व्यवस्था है तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है ना। हमारे भी हम लोग जब उत्सव मनाते हैं तो सबसे कठिन विभाग प्रसाद वितरित करना। तो प्रसाद वितरण का विभाग दिया गया था दुशासन को। ये दुशासन देख रहा था कि सबको ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं खाने पीने के लिए। दरअसल भीम को देना चाहिए था मगर उन्होंने दुशासन को दिया था। और ऐसे अलग अलग विभाग थे और सारा व्यवस्था देखने के लिए कि जो जो काम हुए थे पूरे हुए या नहीं हुए, कौन सा अधूरा रह गया कौन सा पूरा हुआ, इसके लिए भीष्म और द्रोणाचार्य, तो ये पूरा सारी व्यवस्था ऊपर से वो देख रहे थे कि सब ठीक ठाक है या नहीं, राजाओं की सुविधा ठीक है कि नहीं, प्रसाद बन रहा है कि नहीं, ये सारा वो देख रहे थे। और जो धन व्यय करना था, धन का खर्च करना था, वो विदुर को दिया गया था। तो विदुर देख रहे थे कि धन का सारा खर्चा कैसे है। और जो रत्न आ रहे थे, बहुत रत्न इत्यादि, उनको संभालने का विभाग कृपाचार्य को दिया गया था। तो वो सारे रत्नों को संभाल रहे थे, बहुत रत्न आए थे। ऐसा वर्णन है कि एक भी राजा हजारों रत्न से कम लेकर नहीं आया था उस उत्सव में। जो भी आते थे वो लेकर आते थे उपहार। अब राजा आएंगे तो अपने हिसाब से उपहार देंगे, कोई छोटे मोटे तो चीज नहीं देंगे। और फिर दुर्योधन को भी एक विभाग दिया गया था। दरअसल उसी के कारण दुर्योधन में द्वेष बढ़ गया था। दुर्योधन को एक विभाग दिया था कि जो उपहार आ रहे हैं, जो राजा इत्यादि जो भी लोग उपहार ला रहे हैं उनको लेना और रखना, ये उनका विभाग था। तो जो भी उपहार आते थे वो दुर्योधन लेते थे। तो उसी को देख देख कर उसमें ईर्ष्या बढ़ गई कि इतने उपहार, इतने रत्न, इतनी चीजें आ रही हैं, क्या क्या नहीं ला रहे थे लोग। तो ये देख देख कर उसकी ईर्ष्या बढ़ गई कि अरे ये युधिष्ठिर के पास इतना कैसे हो गया। देखिए हमारी ईर्ष्या कैसे बढ़ जाती है। हम जब किसी दूसरे की प्रगति देख लेते हैं, किसी दूसरे के पास धन देख लेते हैं। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन के पास बहुत कम धन था, गरीब आदमी था, ऐसा नहीं था, उसके पास भी बहुत था, भंडार था। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि वो लोगों को प्रसन्न रखने के लिए बहुत धन दिया करता था, ऐसे ही बांटता था ताकि लोग खुश रहें और जो वो कहे वो करें। तो बहुत धन था उसके पास, लेकिन फिर भी द्वेष। तो ये जो द्वेष की भावना है, देखिए इस प्रसंग से एक महत्वपूर्ण चीज हम सोच सीखते हैं, सेवा का भाव। सारा जो व्यवस्था हो रही है उसमें हर कोई व्यक्ति सेवा करने के लिए तैयार है। और श्री कृष्ण ने भी एक सेवा की, सबसे महत्वपूर्ण सेवा कहना चाहिए। श्री कृष्ण ने दिखलाया अपने उदाहरण से कि सारा ऐश्वर्य होते हुए, सारी शक्ति होते हुए, सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण होते हुए उन्होंने सेवा ली ब्राह्मणों के चरण धोने की। जो भी ब्राह्मण वहां आते थे, आप सोचिए, वो ब्राह्मण जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों को धो रहे हैं कृष्ण। ये प्रेम है उनका युधिष्ठिर के प्रति, पांडवों के प्रति। तो ऐसा प्रेम भगवान प्रदर्शित करते हैं। और नारद मुनि एक स्थान पर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये जितने सारे ऋषि मुनि, सारे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, ये इस यज्ञ में भाग लेने नहीं आए हैं, ये आपको देखने आए हैं कि कौन है ये युधिष्ठिर जिसके यज्ञ में कृष्ण ब्राह्मणों के चरण धो रहे हैं। वो कृष्ण जो भगवान है वो एक दास बने हुए, एक सेवक बने हुए हैं। तो ये कौन व्यक्ति है, इसको देखना है हमें। तो भगवान ने ये सेवा ली। तो इस प्रसंग में हम सेवा के महत्व को देखते हैं कि हर कोई सेवा करना चाहता। दुर्योधन सेवा कर रहा, दुशासन सेवा कर रहा, विदुर सेवा कर रहे, भीष्म कर रहे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हर एक व्यक्ति, स्वयं कृष्ण सेवा कर रहे हैं। तो दो महत्वपूर्ण बातें, पहली चीज सेवा, और कृष्ण दिखलाते हैं नम्रता, सच्ची नम्रता। क्या नहीं था कृष्ण के पास? धन, ऐसी सारी चीजें थी जो उनको अहंकार दे सकती थी। धन था, ऐश्वर्य था, यश था, बल था, सौंदर्य था, ज्ञान था, क्या नहीं था कृष्ण के पास? लेकिन कृष्ण की नम्रता। हमारे सारे धन में, हमारे सारे ऐश्वर्यों में अगर नम्रता नहीं है हमारे अंदर, तो वो भगवान को प्रसन्न नहीं करती। हमारी भक्ति अगर हम अहंकार से करते हैं तो ये रजोगुणी भक्ति है। श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि चार प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। एक है सत्वगुणी भक्ति, कि हम सत्वगुण में रहकर भगवान की भक्ति करें। देखिए, भक्ति भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। भगवान की भक्ति है, हरि की ही भक्ति। कोई कह सकता है कि अरे भगवान की भक्ति है, कैसे भी करो, है तो भगवान की भक्ति, उसका लाभ होना चाहिए। तो फिर क्या लाभ है सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, क्या फर्क पड़ता है? हम भक्ति भगवान की कर रहे हैं, नहीं। इन सारी भक्ति का प्रभाव अलग अलग होता है भक्ति ही। और अच्छा, एक प्रश्न आता है कि भगवान की भक्ति का प्रभाव अलग अलग कैसे हो सकता है? भक्ति तो भक्ति है, शुद्ध है, जैसे अग्नि। चाहे बच्चा उसमें हाथ डाले, चाहे बड़ा डाले, बूढ़ा डाले, हाथ जलेगा। तो कृष्ण की भक्ति ऐसी होनी चाहिए, किसी भी तरह करे लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग तरह से भक्ति होती है, उसका अलग अलग लाभ होता है? इसको स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम। हम जिस भाव से, जिस उद्देश्य को लेकर हम श्री कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण वही इच्छा को हमारे हृदय में बढ़ा देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसीलिए कृष्ण के पास कौन सी इच्छा लेकर आना चाहिए, कृष्ण के पास क्या मांगना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हम जिस इच्छा को, जिस भाव को लेकर आते हैं, उसी भाव से कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर हम कुछ मांगने आते हैं, कुछ धन, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ इस भौतिक जगत का सुख, कृष्ण दे देते हैं। कृष्ण मुक्ति भी दे सकते हैं। मुक्तिं ददाति करहिचित् न च भक्ति योगम्। कृष्ण मुक्ति भी दे सकते हैं अगर कोई मांगे, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं बहुत जल्दी। भक्ति देने के लिए परीक्षा लेते हैं, ये तैयार है कि नहीं, ये सच में भक्ति चाहता है या कुछ और चाहता है, तो परीक्षा लेते हैं। लेकिन कोई धन मांगता है, कोई कुछ और मांगता है, मान प्रतिष्ठा दे देते हैं, ठीक है ले जाओ, लोग प्रसन्न हो जाओ। तो इसीलिए अलग अलग भक्ति है, सत्वगुणी भक्ति है। सत्वगुणी भक्ति मतलब एक कर्तव्य मानकर भगवान के लिए हम जब करते हैं। रजोगुणी भक्ति, जहां हम किसी के दूसरे को परास्त करने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए हम करते हैं, ये रजोगुणी भक्ति है। अर्थात हम भक्ति कर रहे हैं, हमने वैराग्य ले लिया, भगवे वस्त्र धारण कर लिए, और हम चाहते हैं कि लोग गुणगान करें, मैं जब आऊं तो सब लोग प्रणाम करें, सब मेरी बातें सुने, सब मुझे भगवान माने। रजोगुणी भक्ति। और तमोगुणी भक्ति द्वेष से की गई, किसी को हानि पहुंचाने के लिए की गई भक्ति, ये तमोगुणी भक्ति है। अर्थात हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के सामने आ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान उस व्यक्ति का इतना बुरा होना चाहिए कि वो जीवन भर याद रखे, तमोगुणी भक्ति। कोई लाभ नहीं है ऐसी भक्ति का, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं उससे। और चौथी प्रकार की भक्ति जो कपिल मुनि बताते हैं, वो है निर्गुण भक्ति, शुद्ध भक्ति, जो गुणों के परे है, जो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, अपने मान सम्मान के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, द्वेष भावना से नहीं, हिंसा से नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और ऐसी भक्ति की कामना, ऐसी भक्ति को बढ़ाने की इच्छा से आचार्य आते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं, और कृष्ण भी हमसे ऐसी ही भक्ति की कामना करते हैं। और क्यों कृष्ण चाहते हैं ऐसी भक्ति? क्या उनको उनको कोई लाभ होगा उससे? नहीं, हमें लाभ होगा। जीव के लाभ के लिए श्री कृष्ण चाहते हैं कि जीव ऐसी भक्ति करे जिसमें उसको कोई आकांक्षा ना हो, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भागवत कहता है कि अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं, जीव संतुष्ट होना चाहता है, तो एक ही मार्ग है, अहेतु की अप्रतिहता। कभी कभी प्रश्न आता है, अरे हम सब कुछ भगवान के लिए करें तो हम कैसे प्रसन्न होंगे, हमारे आनंद का क्या होगा? तो भागवत कहता है कि जब आप भगवान की भक्ति करते हो, सवय पुंसा परो भक्त जो यथो भक्ति, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अधोक्षजे, ऐसे भगवान की भक्ति जो अभी इस समय हमारी इंद्रियों के परे हैं, ये परम धर्म है, सवय पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की, हेतु नहीं हो, मैं भगवान के पास आ रहा हूं मेरा ये कार्य हो जाए, मैं भगवान के पास आ रहा हूं मुझे ये प्राप्त हो जाए, नहीं, अहेतु की, मैं केवल भगवान के पास आ रहा हूं क्योंकि प्रेम है भगवान से, बस। अप्रतिहता, खंडित नहीं होनी चाहिए, थोड़े समय किया भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने नहीं दिया, मंदिर जाना बंद, नहीं, अप्रतिहता, रुकनी नहीं चाहिए ये भक्ति। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौरीदास की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ऐसी भक्ति सिखलाने के लिए स्वयं कृष्ण आते हैं और आचार्य। तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का पहला उद्देश्य कृष्ण का गुणगान, और इस प्रसंग में कृष्ण स्वयं दिखला रहे, पहली चीज सेवा। तो कैसा सेवा हमारी होनी चाहिए? जब हम भगवान की सेवा करें तो क्या भाव होना चाहिए? क्या अच्छा भाव है सेवा का? जब हम सेवा करते हैं भगवान की तो हमें क्या सोचना चाहिए? एक ही बात, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास, यही जीव की स्थिति है। और मैं जब भगवान की सेवा करूंगा प्रसन्नता से, हमारा भाव कृतज्ञता का होना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं भगवान की, सबसे पहला भाव कृतज्ञता का चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा मिली, भगवान ने हमें चुना, कितना महत्वपूर्ण है। हम ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं, देवताओं का गुणगान करते हैं, इंद्र का करते हैं, चंद्र का, वरुण का, क्यों? भगवान ने उन्हें चुना है सेवा करने के लिए। भगवान चुनते हैं जीव को, इंद्र बना देते हैं, दूसरे किसी जीव को चुनते हैं, वरुण बना देते हैं, चंद्र बना देते हैं, ब्रह्मा बना देते हैं, इसीलिए वे लोग गुणगान करने योग्य हैं, भाग्यवान हैं। और इसी तरह अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी छोटी सी सेवा स्वीकार की, बस। तो सबसे पहला भाव भक्ति में, सेवा में, कृतज्ञता का होना चाहिए। भक्ति की परिभाषा ही यही है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव को उत्पन्न करें, यही भक्ति है। जितना हम कृतज्ञ होंगे भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, हृदय उतना शुद्ध होगा। तो सेवा सबसे पहले कृतज्ञता के भाव में, धन्य मानते हुए, अपने आप को भगवान को धन्यवाद देते हुए हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की। और इस भाव में जब हम सेवा करते हैं तो हृदय बहुत जल्दी शुद्ध होता है, लेकिन अगर हम सेवा कर रहे हैं कोई कामना से हेतु है तो फिर शुद्ध नहीं होता, फिर द्वेष बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, कामनाएं बढ़ती हैं, भक्ति करते हुए भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हम अच्छे भाव में, कृतज्ञता के भाव में सेवा करते हैं तब फिर हमें लाभ होता है। तो पहला भाव कृतज्ञता का, दूसरा भाव पूर्ण क्षमता उसमें लगानी चाहिए। जब हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें अपना संपूर्ण देना चाहिए, कुछ रखना नहीं चाहिए। कोई भी सेवा मिली हो, छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, क्योंकि भगवान के लिए न कोई बड़ी सेवा है न छोटी सेवा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेता है, बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, भगवान उससे प्रसन्न है, और कोई एक भक्त किसी एक मंदिर में एक कोने में बैठकर छोटी सी सेवा कर रहा है तो भगवान उसकी ओर नहीं देख रहे हैं। नहीं, भगवान के लिए दोनों समान है। बारंबार इस उदाहरण को हम देते हैं, रामायण के समय हनुमान जी और गिलहरी, दोनों समान भगवान के लिए। हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत ला रहे हैं वो सेतु बनाने के लिए, बहुत विशाल पर्वत हनुमान जी उठा रहे हैं। अब गिलहरी रेत के कण जो समुद्र में दिखेंगे भी नहीं। अब सोचिए, रेत का इतना सकन डाल गए अगर कोई समुद्र में तो क्या पता चलेगा। हाँ, पर्वत तो दिखाई देगा, रेत का कण। लेकिन भगवान के लिए दोनों समान। तो ऐसा हमारा सेवा भाव, हमें अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण क्षमता लगानी चाहिए सेवा में। तो पहले तो कृतज्ञ होना चाहिए, दूसरा पूर्ण क्षमता से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, कुछ रखना नहीं चाहिए, जितना हो सके। और साथ ही साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़े समय बाद इस सेवा को कर लें। हमारा भाव ये होना चाहिए कि जितना जल्दी हो इस सेवा को कर लें, पता नहीं जीवन में आगे और अवसर मिले या ना मिले। देखिए, हम सब जानते हैं इस बात को, हम करना नहीं चाहते, हम लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन यह सत्य है कि हमें नहीं पता कि हम लोग कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सेवा को इस भाव में करना चाहिए कि हो सकता है ये मेरी आखिरी सेवा हो इस शरीर में भगवान के लिए। ऐसे भाव में सेवा होनी चाहिए। सेवा को बोझ नहीं समझना चाहिए, ये बड़े भाग्य से मिलती है। कई जन्मों के बाद, कई जन्मों की तपस्या के बाद, भगवान से बारंबार मांगने के बाद, यज्ञ करने के बाद, तपस्या करने के बाद, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद, कई जन्मों के बाद अब हमें ये सेवा मिलती है। तो इसलिए हमें छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि शायद ये मेरी आखिरी सेवा हो, जितना अच्छा हो मैं कर सकूं, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही। इसी तरह जप करना चाहिए, कोई भी सेवा, जप भी एक सेवा। तो ऐसे सेवाएं सब कर रहे थे, भगवान ने नम्रता दर्शाई, इतना सब होते हुए भी उन्होंने चरण धोए। वैसे केवल नम्रता ही नहीं, भक्ति के एक सिद्धांत को सिखला रहे थे भगवान। वो दिखला रहे थे कि वो कैसे प्रसन्न होते हैं। वो प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति नम्र भाव में भक्तों की सेवा करते हुए, अपने आप को दास मानते हुए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए जीवन समर्पित करता है, तब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद भगवद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं, जहां भगवान ने कई गुण बताए, अमानित्वम, मदंबित्वम, अहिंसा, शांतिराज्यम, आचार्य, उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, बहुत सारे करीब 20 गुणों का वर्णन किया भगवान ने श्लोकों में। और प्रभुपाद उनमें से कुछ गुणों को लेते हैं। भक्ति तो है ही, प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति अव्यभिचारिणी, तो वो तो है ही। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अमानित्वम, उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे मान से परे होकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आचार्य उपासना, प्रभुपाद कहते तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे तो सारे गुण महत्वपूर्ण है लेकिन ये तीन चीजें अमानित्वम आचार्य उपासना और भक्तिरव्यभिचारिणी। प्रभुपाद कहते अमानित्व नम्रता होनी चाहिए, जब हम भगवान की भक्ति करें हमारे अंदर नम्रता और आचार्य उपासना अर्थात आचार्यों के बताए मार्ग पर मन से नहीं भक्ति, अपने मन में आए हमें ऐसे भक्ति करनी हम वैसे करने लगे, किसी से पूछा नहीं, हमें ऐसा अच्छा लगता है हम कर रहे हैं भक्ति, नहीं आप भक्ति कर रहे हो आपको देखना है कि ये आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, प्रमाणिक मार्ग है या नहीं, शास्त्र में लिखा है या नहीं। मन से लोग कई व्रतों को करते हैं जिनका कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है लेकिन वो बड़े प्रसिद्ध व्रत हैं और लोग उनको करते हैं, कई कई हफ्तों तक करते हैं, कोई 16 हफ्ते करते हैं, कोई ज्यादा हफ्ते करते हैं, शास्त्र में वर्णन नहीं है उनका, आचार्यों ने अनुमोदन नहीं किया लेकिन हम उन व्रतों को करते हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब आचार्यों के द्वारा बताया हुआ मार्ग, तो इसीलिए भगवान इसको सिखला रहे अमानित्व। तो ऐसे ये यज्ञ प्रारंभ हुआ, बहुत सारे लोग आए और उस समय भीष्म देव ने, वैसे नारद मुनि आए और वहां वर्णन है महाभारत में कि नारद मुनि आकर जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ऐसी सेवा कर रहे हैं तो उनके मन में श्री कृष्ण का गुणगान आया, तो भागवत में महाभारत में उस समय वहां पर श्री कृष्ण का गुणगान किया गया। देखते ही नारद मुनि सोचने लगे, उनको उस सभा का स्मरण आया, पूर्व में एक सभा हुई थी देवताओं की जहां देवताओं ने ये निर्णय किया था कि श्री कृष्ण आने वाले हैं पृथ्वी पर, हम सबको भी अपने अपने अंश अवतार में प्रकट होना है, सेवा करनी है। देखिए देवता भी आतुर हैं भगवान की सेवा करने के लिए, छोटी सी सेवा, धर्मराज स्वयं आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, सब देवताओं के अंश आते हैं। तो जब भी भगवान आते हैं देवता आतुर होते हैं कि हम आकर सेवा करें, और हमें अगर सेवा का अवसर मिलता है तो हम उसे बोझा समझकर अगर छोड़ दें तो कितने दुर्भाग्य की बात है। एक सेवा ही है जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उत्पन्न करते हैं, एक सेवा ही है जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, एक सेवा ही है जिसके द्वारा हमारे हृदय में बैठे हुए अहंकार को हम नाश करते हैं, और सेवा ही है जिसके द्वारा हम भगवान को और अपने संबंध को जान पाते हैं। इसीलिए सेवा, प्रभुपाद ने जहां भी अंग्रेजी में भक्ति का अनुवाद किया कहीं भी उन्होंने डिवोशन नहीं लिखा, डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस। ज्यादातर जहां भी हम देखते हैं प्रभुपाद अनुवाद लिखते हैं डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस, सेवा सेवा सेवा। तो ऐसा भाव सेवा का चाहिए, कृतज्ञता चाहिए। बड़े बड़े भाग्य से कई जन्मों के बाद ये सेवा, हो सकता है दिखने में बड़ी सरल सेवा है, केवल भगवान का भोग बना देना, भगवान के लिए केवल हार बना देना, भगवान का श्रृंगार कर देना, मंदिर साफ कर देना, बड़ी सरल सेवा है, ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत महान कार्य है। हमें लगता है महान कार्य तो वो होगा जो हिमालय में जाकर एक पांव पर खड़े होते हैं, तपस्या करते हैं, वो महान कार्य है, या फिर जो लोग बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को बोलते हैं, उपनिषद और पुराणों से जो प्रवचन करते हैं वो बड़ा कार्य है। नहीं, सारी तपस्याओं का उद्देश्य, सारे ज्ञान का उद्देश्य, उपनिषद पुराण वेद शास्त्र, इनका उद्देश्य है सेवा। और जो सेवा का आनंद है वो सर्वोच्च आनंद है। इस जगत में जो हम आनंद लेते हैं इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, जिह्वा से, त्वचा से, नासिका से, जिससे भी हम आनंद लेते हैं जड़ आनंद है, जड़ आनंद अर्थात जड़ वस्तुओं का आनंद, जैसे ये वस्तु ये जड़ है, कोई प्राण नहीं है इसमें और हम इससे आनंद लें, ऐसा ही आनंद हम अपने शरीर से लेते हैं। शरीर जड़ वस्तु है, शरीर में प्राण नहीं है, प्राण आत्मा प्रदान करती है, चेतना आत्मा प्रदान करती है, शरीर मृत है, सदैव मृत है। भगवान भगवद गीता में बहुत स्पष्ट करते हैं अर्जुन को कि आत्मा ये चेतना का स्रोत है। अविनाशी तु तद्विद्धिम येन सर्वम इदम ततम, वो चेतना, वो आत्मा जो अविनाशी है, अविनाशी अर्थात जिसका नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। देहिनोस्मिन यथा देहे, एक इस देह में एक देही है, आत्मा है। तो इसलिए शरीर नश्वर है और शरीर से प्राप्त होने वाला आनंद भी नश्वर है और वो जड़ है, इसलिए वो जड़ानंद कहलाता है। और जब व्यक्ति इस आनंद के ऊपर उठ जाता है, उसको लगता है हाँ ये सब शरीर का आनंद बेकार है, ये जगत बेकार है, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो वो ब्रह्म आनंद को लेता है। तो पहला स्तर जड़ आनंद जो बहुत निचला स्तर है, दूसरा ब्रह्म आनंद, वो ब्रह्म की प्राप्ति करके ब्रह्म में आनंद लेता है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्म का आनंद, ब्रह्मा जी का जो आनंद है उससे भी हजार गुना ज्यादा आनंद है। वैसे जब हम इस जगत में रहते हैं, जो आनंद लेते हैं बहुत थोड़ा है, हमारे सारे आनंद से हजार गुना ज्यादा आनंद देवता लेते हैं, फिर उनसे ज्यादा ऊंचे लोकों के लोग लेते हैं, उनसे ज्यादा ब्रह्मा जी लेते हैं, और ब्रह्मा जी से बड़ा आनंद ब्रह्म का आनंद है। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अंत में विलीन हो जाना है, भक्ति, आप भक्ति करो, योग करो, कुछ भी करो, अंत में विलीन हो जाना है। नहीं, ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है, ये शास्त्रों का संदेश नहीं है, विलीन होना नहीं है हमें, हमें तो सेवा करनी है। तो देखिए, विलीन होना प्रभुपाद कहते थे कि ये एक इंद्रिय तृप्ति है। अगर हम विलीन होना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी इंद्रिय तृप्ति है। क्यों? हम तो जन्म मृत्यु के परे जाना क्या इंद्रिय तृप्ति है? प्रभुपाद कहते हैं हां। क्यों? क्योंकि सेवा नहीं है। हम आनंद चाहते हैं, हम जन्म नहीं चाहते, मृत्यु नहीं चाहते, बुढ़ापा नहीं चाहते, हम बीमारी नहीं चाहते, लेकिन सेवा भी नहीं करना चाहते, ये इंद्रिय तृप्ति है। तो ब्रह्म आनंद जड़ आनंद से ऊपर है, सर्वोच्च आनंद नहीं, और उससे ऊंचा आनंद होता है प्रेम का आनंद, इसे प्रेम आनंद कहते हैं। तो प्रेम का आनंद ये उससे ऊंचा है ब्रह्म आनंद से, जहां कृष्ण से प्रेम होता है, भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान, ये तो बहुत बड़ा आनंद है। लेकिन आचार्य समझाते हैं इससे बड़ा आनंद है। अब प्रेम से बड़ा कौन सा आनंद हो सकता है? जड़ आनंद इंद्रियों का आनंद है, बहुत निचला है, इंद्रियां तो थोड़े समय आनंद देती हैं, फिर शिथिल हो जाती हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। ब्रह्म आनंद भी थोड़े समय का है, हाँ इस जगत के आनंद से बहुत लंबा समय है, लेकिन भागवत कहते हैं क्योंकि वहां पर कार्य नहीं है, आत्मा कार्यशील नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा एक क्षण भी बिना कार्य के नहीं रह सकती। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अकर्मकृत हो ही नहीं सकता कि आत्मा कार्य नहीं करे। तो जब ब्रह्म आनंद में जाते हैं, जहां जहां आनंद है लेकिन कार्य नहीं है, सेवा नहीं है, भागवत कहता है पतंति अधः, वहां से भी वापस आना पड़ता है। इसीलिए ब्रह्म में लीन होना, अपने अस्तित्व को समाप्त करना, भगवान में लीन होना, ये पूर्णता नहीं है, इससे पूर्ण आनंद नहीं मिलता। क्यों? पतन्ति अधः, फिर से आना पड़ता है, क्योंकि वहां क्रिया नहीं है और आत्मा क्रिया करे बिना रह नहीं सकती। इसलिए भले वहां आनंद है लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाते। तो फिर प्रेमानंद, भगवान से प्रेम का आनंद, लेकिन उसके परे है सेवानंद, वो आनंद जो सेवा में आता है, भगवान की सेवा में। ऐसी सेवा के लिए भक्त भगवान के निकट भी नहीं जाना चाहता। ऐसी सेवा के आनंद के लिए भक्त मुक्ति को भी त्याग देता है। ये सेवा का आनंद है। कपिल मुनि तीसरे स्कंद में अपनी माता को जब ज्ञान दे रहे हैं तो उसमें कहते हैं कि मेरा भक्त, कपिल मुनि ये कोई मुनि नहीं है, ये भगवान के अवतार हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा भक्त सब प्रकार की मुक्तियों को त्याग देता है। बहुत प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सारिष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, भगवान कहते हैं वो सबको त्याग देता है, उसके लिए कोई नहीं है। क्यों, कब त्यागता है? भगवान बहुत सुंदर उसमें बात कहते हैं, हम लोग सबके लिए सुनने योग्य है। भगवान कहते हैं दीयमानां न गृह्णाति, दीयमानां मैं देता हूं, न गृह्णाति वो नहीं लेते। देखिए ये भक्त हैं भगवान के। भगवान हर श्लोक में अपने भक्तों का गुणगान करते हैं और इसमें भी कहते हैं कि चार प्रकार की मुक्तियां, सारिष्टि, सालोक्य, सामीप्य, ये मैं देता हूं, लेकिन लेते नहीं है। दीयमानां न गृह्णाति, कब? बिना मत सेवनम जना, सेवा नहीं है तो। तो अगर सेवा नहीं है तो भक्त को वैकुंठ भी नहीं चाहिए। अगर सेवा नहीं है, ये भक्ति है, तो भक्ति की पूर्णता सेवा में है, आनंद की पूर्णता सेवा में है, मुक्ति की पूर्णता सेवा में है, हम सबके अस्तित्व की पूर्णता सेवा में है, हमारा अंतिम लक्ष्य सेवा है। और इसीलिए कहा गया कि अगर हम भगवान की सेवा में नहीं हैं तो जीवन अभी मृतो ही सा, वो व्यक्ति केवल मृत व्यक्ति के समान है। तो ऐसी सेवा ये युधिष्ठिर महाराज दिखला रहे हैं, ऐसी सेवा कृष्ण दिखला रहे हैं, ऐसी सेवा देवता दिखलाते हैं, जिसका स्मरण अब नारद मुनि कर रहे हैं कि सभी देवता सेवा करने के लिए आए हैं श्री कृष्ण की, और वो जानते हैं कि कौन कौन है। नारद मुनि तो जानते हैं, हरेक को देखकर वो समझ रहे हैं ये वो देवता का अंश है, ये उस देवता का अंश है। जैसे हमने बतलाया था पिछली बार, अभिमन्यु ये सोमदेव के पुत्र थे और इसीलिए थोड़े से समय के लिए आए थे, आगे वर्णन करेंगे जब अभिमन्यु का और वर्णन आएगा। तो सारे देवता आए थे अपने अपने अंश के रूप में केवल भगवान की सेवा करने के लिए। तो जहां सेवा नहीं है वहां कोई आनंद नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भक्तों ने बड़े बड़े ऐश्वर्य को त्याग दिया, मान सम्मान को त्याग दिया, जहां सेवा नहीं मिली लेकिन सेवा को महत्व दिया, भगवान की सेवा। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण हम देख ले सकते हैं प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद वृद्ध अवस्था में थे, 70 साल के बूढ़े व्यक्ति, 70 साल की उम्र में व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो चाहता है कि बस आराम से रहूं, जीवन कट जाए, थोड़ी बहुत सांसें बची हैं, या तो भगवान का नाम ले लूं, अगर वो भक्त नहीं है तो अपने बच्चों के साथ खेल लूं, उतना ही। इवन अगर भक्त है, थोड़ी बहुत उसके अंदर धार्मिकता है, तो वो सोचता है कि ठीक है थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लूं बस। प्रभुपाद ने वृंदावन को त्यागा 70 साल की उम्र में। ये वो उम्र है जिसके पहले लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, वृंदावन। शास्त्रों में वर्णन है वृंदावन में जो देह त्यागता है निश्चित भगवान के धाम जाता है, लोग चाहते हैं वहां जाना। और श्रील प्रभुपाद ने उस उम्र में 70 साल की वृद्ध अवस्था में वृंदावन त्यागा और कहां गए? अमेरिका, दूसरा देश, अनजान देश, जहां किसी को भक्ति नहीं पता, कृष्ण नहीं पता, शिल प्रभुपाद को कोई जानता नहीं है। जब वो बंदरगाह पर उतरे, बाहर निकले, उन्हें पता नहीं था कि इधर जाना है या इधर जाना है, कोई उनको लेने नहीं आया था, कोई बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ उनका, कोई सारी व्यवस्था नहीं थी कि बस जाएंगे, प्रवचन देंगे, हजारों लोगों को भक्त बनाएंगे, कुछ नहीं था। किस लिए गए प्रभुपाद? 70 साल की उम्र में उस स्थान को, एक सन्यासी होते हुए उस स्थान को त्यागा जिसके लिए लोग कामना करते हैं कि इस उम्र में बस हम वहां रह लें, हमारा देह वहां छूट जाए। उन्होंने उस उम्र में उसको त्यागा और कहां गए? ऐसे देश में जहां, वो अपनी कविता में लिखते हैं कि सब रजोगुण से, तमोगुण से भरे पड़े हैं, आच्छन्न हैं, जहां लोगों को भक्ति नहीं पता। प्रभुपाद जाकर उनको बताने वाले हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, अवैध संग मत करो, जुआ मत खेलो। ये वो कार्य हैं जो बचपन से वो लोग करते हैं, ये वो कार्य हैं जिन्हें वो पाप नहीं मानते। 70 साल के उम्र में प्रभुपाद वृंदावन छोड़ते हैं केवल सेवा के लिए। उनके हृदय में ये था कि मुझे मेरे गुरु की सेवा, कृष्ण की सेवा करनी है। इसलिए वो कहते हैं कृष्ण से कि आप लेकर आ रहे हैं मुझे यहां, ना चाहो ना चाहो प्रभु, ना चाहो से मते, काष्टे रपुतली जथे जद, ना चाहो से मते, ना चाहो ना चाहो प्रभु, ना चाहो से मते। जैसे आप नचाना चाहे नचा लीजिए, ये सेवक का भाव है। और वहां जाके भी ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद को सब कुछ अच्छा हुआ। वहां जाने के बाद 1 वर्ष तक हर बार प्रभुपाद बंदरगाह पर आते थे, ये देखने के लिए कि अगला जहाज भारत में कब जा रहा है, मैं वापस जाऊं, यहां कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर रुक जाते थे, सेवा करनी है, वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर वापस, नहीं सेवा करनी। प्रभुपाद को कीर्तन करना था, कोई नहीं था उनके साथ, अकेले एक छोटा सा ड्रम पार्क में जाकर बैठे हैं अकेले, और बजा रहे हैं और गा रहे हैं भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सेवा। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, अनजान देश, अनजान जगह, कोई जानता नहीं, कोई मदद नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था। जहां रह रहे थे, कभी कभी वहां से रात को 12 बजे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, सड़क पर खड़े हैं रात को 12 बजे। 70 साल के वृद्ध सन्यासी, कोई पूछने वाला नहीं। किस लिए कष्ट लिया उन्होंने? सेवा के। और यहां हमें थोड़ा सा कष्ट होता है भगवान की सेवा में, हम बोलते हैं हम सेवा नहीं करेंगे। सोचिए क्या कष्ट प्रभुपाद ने लिया, एक सन्यासी रात को 12 बजे अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच सड़क पर फेंक दिया जाता है, चले जाओ यहां से, कोई नहीं उनको मदद करने वाला। प्रभुपाद ने सेवा के लिए सब स्वीकार किया। वहां घूमने नहीं गए थे अमेरिका, वो सेवा के लिए गए। तो ये उदाहरण हमारे सामने, अकेले उन्होंने शुरुआत की, तो इसीलिए सेवा को महत्व देना चाहिए। तो ऐसे राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, नारद मुनि ने स्मरण किया भगवान का और देखा कि वही श्री हरि, वही नारायण सामने कृष्ण के रूप में हैं। भीष्म देव ने गुणगान किया श्री कृष्ण का, और फिर उस समय युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म से, भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तुम यहां आओ और जितने भी राजा आए हैं उनकी पूजा करो, उनके चरणों को धो। देखिए कितनी विचित्र बात यहां पे देखने में आती है। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे हैं सम्राट बनने के लिए, अर्थात उन सारे राजाओं के ऊपर राजा बनने के लिए। और भीष्म ने क्या कह रहे हैं कि आओ और सारे राजाओं को पूजा करो, चरण धो। उन राजाओं की जिनको अभी अभी उनके भाई हरा के आए हैं, उन राजाओं की जिन्होंने कर दिया है, उन राजाओं की जिन्होंने स्वीकार किया कि युधिष्ठिर महाराज आप सम्राट हैं, आप हमसे ऊपर राजा हैं। लेकिन प्रथा क्या है, आओ उनकी पूजा करो, उनके चरण धो। अर्थात ये बहुत सुंदर सिद्धांत है महाभारत से कि अगर आप सम्राट बनना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, तो लोगों के सेवक बनने का प्रयास कीजिए। सच्चा नेता, सच्चा प्रमुख वो है जो सेवक हो, सेवा के भाव में, सेवक के भाव में जो नेता बने। तो यहां सम्राट बनना है, ये आज के लोगों के लिए तो बड़ा विचित्र है। आज के प्रधानमंत्री को कहा जाए कि आपने जिनको इलेक्शन में हराया है आइए उनके चरण धोइए, नहीं हो सकता। यही कह रहे थे, यही भीष्म ने कहा, अभी अभी जिन राजाओं को हरा के आए हैं वो सबको बुलाया था, वो सब थे वहां, किसी को हराया, किसी ने कर दिया, किसी ने स्वीकार किया, उन सब के चरण धोने। तो देखिए महाभारत कोई एक ऐसा ही ग्रंथ नहीं है, सारे सिद्धांत देता। अगर सच्ची दृष्टि में किसी को लोगों पर शासन करना है, नेता बनना है, उसको सेवक बनना चाहिए, सेवा से लोगों का हृदय जीतना चाहिए, दंड से नहीं, अधिकार से नहीं, सेवा से, प्रेम से। तो फिर उन्होंने बुलाया और फिर ये बात हुई कि सबसे पहले कौन से राजा की पूजा हो। तो सबसे पहले किसकी पूजा हो, ये प्रश्न आया। और युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया भीष्म देव से। देखिए युधिष्ठिर महाराज भी जानते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया भीष्म से, आप बताइए, आपने कहा कि सब राजाओं की पूजा करनी है, ठीक है मैं तैयार हूं, मैं आ गया हूं, अब आप बताइए किसकी पूजा पहले करें। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर जानते नहीं थे या किसकी पूजा करना चाहते थे उन्हें पता नहीं था, लेकिन एक नियम उन्होंने स्थापित किया कि हमें हर काम अपने वरिष्ठों से, अपने गुरु से पूछकर करना चाहिए। जीवन का हर कार्य अगर हम गुरु के, वरिष्ठों के आदेशानुसार करते हैं तो निश्चित कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीवन में सफलता आए या ना आए, भौतिक दृष्टि से कुछ लेना देना नहीं, कृष्ण प्रसन्न होंगे अगर हम अधिकारी का, गुरु का, परंपरा का पालन करते हैं। तो यहां युधिष्ठिर महाराज दिखला रहे, वो तो कह सकते थे कि मैं कृष्ण की अग्र पूजा पहले करूंगा या इनकी करूं, नहीं आप बताइए। यही हमने रामायण में सीखा, स्वयंवर हो रहा है, कोई राजा आकर उठा नहीं पा रहे उस धनुष को, रामचंद्र जी बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, जनक महाराज ने घोषणा कर दी, क्या इस ये पृथ्वी लगता है वीरों से शून्य हो गई है, कोई वीर बचा नहीं इस पृथ्वी पर जो इस धनुष को उठा सके, सबके सामने अपमान कर दिया सारे वीरों का, लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ, लक्ष्मण उठकर खड़े हो गए, उन्होंने कहा इसको तो मैं अभी चुटकी में उठा सकता हूं, रामचंद्र जी ने बिठा दिया, बैठ जा। लेकिन रामचंद्र जी उठे नहीं, लक्ष्मण तो क्रोध में, लक्ष्मण भी उठे थे केवल इसलिए कि उन्होंने कहा कि जनक तुमने रामचंद्र का अपमान कर दिया, तुम्हारी इस सभा में रामचंद्र जी बैठे, तुमने कहा कैसे कि पृथ्वी शून्य हो गई है वीरों से, इसलिए क्रोध आया था उन्हें, इसलिए क्रोध नहीं आया था कि वो कह रहे थे चाहे तो मैं उठा सकता हूं, ऑफकोर्स वो उठाते तो रामायण बदल जाती, तो इसीलिए रामचंद्र जी का तुम बैठ जाओ, रामायण मत बदलो, बैठो आराम से। लेकिन रामचंद्र जी नहीं उठे, कब तक, जब तक विश्वामित्र ने कहा नहीं। रामचंद्र जी भी ये सब सुन रहे थे कि निंदा हो रही है कि कोई वीर नहीं है, सभा में कोई नहीं, इस पृथ्वी में कोई नहीं, इत्यादि इत्यादि, रामचंद्र जी सुन रहे थे, वो देख रहे थे सारे राजा जा रहे, वो नहीं उठे जब तक विश्वामित्र ने कहा नहीं। क्योंकि विश्वामित्र ने, जब विश्वामित्र उनको लेके जा रहे थे तो उस समय रामचंद्र जी ने वचन दिया था, दशरथ महाराज ने कहा था आज से ये तुम्हारे पिता, जो ये कहें वो करना, तो वो मान सम्मान दे रहे, गुरु हैं, पिता हैं, तो जब तक उन्होंने कहा नहीं वो उठे नहीं, लेकिन जब विश्वामित्र ने कहा कि हाँ राम अब तुम जाओ, तब रामचंद्र जी उठे। तो ये परंपरा अब युधिष्ठिर महाराज भी यहाँ दिखला रहे हैं और इसी परंपरा को हमें भक्ति में पालन करना चाहिए। तो अब भीष्म देव ने किसकी अग्र पूजा के लिए कहा, क्यों कहा, क्या कारण कि इनकी अग्र पूजा होनी चाहिए, और फिर किसने अग्र पूजा की, और फिर एक बहुत बड़े राजा का वध होना है और वो है शिशुपाल, तो उसका वध क्यों हुआ, इस सब का वर्णन अगले सोमवार को इसी क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज समय काफ़ी हुआ है, प्रश्नों को नहीं लेंगे।